ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون ابھی ہم نے یہاں سے شروع کر کے اگلی چند آیات سورۃ حمیم سجدہ یا سورۃ فصلت اس کی تلاوت سنی ہے آئیے تھوڑا سا اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ رمضان گزرنے کے بعد اب ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے اس قرآن کے ساتھ تھوڑی سی بات اس سے پہلے کروں گی عید سے متعلق آج الحمدللہ دنیا میں کچھ جگہوں پہ عید کا تیسرا دن ہے کسی جگہ دوسرا بھی ہو سکتا ہے اور کہیں تو چوتھا ہے کیا عید بھی دین کا حصہ ہے بالکل حصہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ایک دن لوگوں کو بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا اور فیل ہو رہا تھا کہ آج کوئی سیلیبریشن ہے تو آپ نے پوچھا کہ آج کوئی خاص بات ہے تو لوگوں نے کہا کہ ہم دور جاہلیت سے آج کے دن میں ایک عید مناتے تھے کوئی فیسٹیول تھا ان کا جس کو آج کی زبان میں آپ میلہ ٹھیلا کہہ سکتے ہیں تو ہم نے اس خوشی میں یہ سب کچھ کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب اللہ نے ہمیں دو عیدیں دے دی ہیں لہٰذا اس کے علاوہ کوئی اور عید نہیں ہے یعنی عید الفطر جو کہ اب ہماری گزر رہی ہے رمضان کے 29 یا 30 روزے رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا میں اس بات کی جزا دیتا ہے کہ اگر تم اتنے تھوڑے دن اللہ کی رضا کے مطابق گزارتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عید کا دن خوب کھانے پینے پہننے اوڑھنے ملنے ملانے کے لیے دیتا ہے. تو یہ سوچو کہ جب تم پوری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزار کے جاؤ گے تو تمہاری آخرت کتنی خوبصورت ہوگی. یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ اگر ایمان والے کی زندگی رمضان جیسی ہو جائے تو اس کی آخرت عید جیسی ہوگی. کلو وشربو ہنیم, کھاؤ اور پیو, بیما اسلف تم فی الایام الخالیہ, ان کاموں کے بدلے جو تم پچھلی زندگی میں کر چکے ہو. ٹھیک ہے, تو عید کا دن جو ہے وہ حقیقت میں خوشی کا دن ہے. اس دن روزہ رکھنا منع ہے. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ عید کے فوراً بعد شوال کے روزے شروع ہوتے ہیں, کئی لوگ عید سے اگلے ہی دن رکھ لیتے ہیں, اب باقی لوگ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور وہ بیٹھے ہیں جی میرا روزہ ہے. تو یہ صلہ رحمی اور بعض دفعہ آپس کے تعلقات کے بھی اگینسٹ جاتا ہے. خوشی کے موقع پہ خوش ہوں, پریشان ہونے کے موقع پہ پریشان ہوں. تو ٹھیک ہے آپ کو کوئی مجبوری ہے بعد میں نہیں رکھ سکیں گے, یا آپ اکیلے ہیں, منع تو نہیں ہے عید کے دوسرے دن روزہ رکھنا, لیکن یہ ہے کہ ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ ہم خوش بھی دوسروں کے ساتھ رہیں. یہ نہیں کہ میں نیکی کروں اور آپ کو گلٹ میں ڈال دوں, میں بہت نیک بن رہی ہوں آپ میرے سے بہت معروب ہو رہے ہیں کہ یہ تو بڑی نیک ہیں, یہ تو ہر دن روزے سے ہوتی ہیں, یہ تو یہ کرتی ہیں, لیکن آپ میری وجہ سے ہر وقت دکھی ہوتے رہیں. دینداری کیا ہوتی ہے کہ دوسرے کو اپنے ساتھ کمفرٹیبل کیا جائے, جو آپ کی عبادات ہیں تنہائی کی وہ رکھے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے کا حکم ہے. اگر آپ میں سے کسی سسٹر کو نہیں معلوم یا پہلے نہیں رکھتے تھے تو اس سال کوشش کر لیں گے انشاءاللہ. کسی بھی دن رکھ سکتے ہیں, کوئی ضروری نہیں اگلے دن رکھیں, یہ بھی ضروری نہیں مستقل رکھیں, آپ پورے مہینے میں کبھی بھی رکھ لیں. پھر ایک سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی پہلے چھٹے ہوئے رکھیں کہ پہلے یہ رکھیں, دونوں میں سے ہے, کیا ایک ہی ساتھ رکھ لیں؟ تو دونوں ایک نیت سے تو نہیں رکھ سکتے, وہ فرض ہے یہ نفل ہے. ہاں رہ گئی بات پہلے وہ رکھیں یا یہ رکھیں, تو احسن درجہ کیا ہے کہ آپ پہلے وہ پورے کریں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد اس نے شوال کے رکھے تو پورے سال کے روزوں کا اجر ہے. تو پورے رکھ لیں گے تو باقی وہ بھی ہو گئے. اور سچ بتاؤں کہ ابھی چونکہ عادت ہوئی ہوتی ہے تو رکھے بھی جاتے ہیں, جب گھر کے سب لوگ مل کے رکھیں گے تو آسان بھی ہو جاتا ہے. دوسری بات ہے کہ نہیں کوئی خطرہ ہے, کسی کے چھٹے ہوئے بھی بہت سے ہو سکتے ہیں. یعنی ایک تو عید کی کچھ گہما گہمیاں ہوں گی, پھر اس کے بعد آپ کے اپنے چھٹے ہوئے 8-10 بھی روزے کئی لوگوں کے ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد دوبارہ آپ یہ 6 بھی رکھتے, تو ڈر یہ ہے کہ یہ 6 نہیں رکھے جائیں گے. تو پھر جس طریقے سے بھی نیت رکھتے ہوئے کریں تو جو اجر اللہ نے پورا دینا ہے وہ جب آپ یہ 6 پورے کریں گے تب پورا ہو جائے گا. یعنی آسان درجہ یہ کہ رمضان کے پورے رکھ لیں پھر یہ رکھیں 6. لیکن اگر آپ کو مجبوری, ڈر, خوف یا آپ کے حالات ایسے ہیں, سرکمسٹانسز ہیں, ٹریولنگ ہی ہے مسلسل آپ کی, تو پھر کیا کریں, پھر آپ یہ رکھ لیں اور اس کو ساتھ ساتھ رکھتے جائیں. جب اگلے شعبان تک پورے کریں گے تو انشاءاللہ پھر سال کے تو ہو ہی جائیں گے. خیر فقہی ایشوز میں بہت زیادہ بات میں کرتی بھی نہیں, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب کچھ روزے رکھنا اور یہ ہمارا اتنا اللہ کے ساتھ خشوع خضوع ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے, اصل یہ بات ہے. رمضان سے پہلے یا رمضان کے بعد ایک دل نہیں ہو سکتا. رمضان سے پہلے والی روٹین اور رمضان کے بعد والی روٹین ایک نہیں ہو سکتی. رمضان سے پہلے والا ایمان اور رمضان کے بعد والا ایمان ایک نہیں ہو سکتا. یہ ایسے ہی ہے کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کے بعد, کیا ایک ہی حالت ہوتی ہے جسم کی؟ کھانا کھانے سے پہلے دل ڈوب رہا ہے, بھوک لگ رہی ہے, نکاہت ہے, کمزوری ہے, تو جب کھا لیا تو اس کے بعد الحمدللہ سحر ہے, پیاس لگی بھی ہے, ہونٹ خشک ہو رہے ہیں, پپڑیاں جم رہی ہیں, دل چاہ رہا کچھ پئیں, پی لیا, فرق ہے نا. تو رمضان جو ہوتا ہے نا یہ ہمارے اندر ایک انرجی دینے آتا ہے. ہر سال کے لیے ایک ریفریشنگ کورس ہوتا ہے. لعلکم تتقون کی صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ سکھاتے ہیں کہ ہم اپنی اگلی زندگی میں کیئرفل ہو جائیں. ہمارے اسلاف جو تھے وہ رمضان کا بھی حق ادا کرنے کی کوشش کرتے, لیکن نیکی کی جو خوبصورتی ہے نا وہ یہ ہے کہ جتنی زیادہ کریں اتنا اللہ کا خوف زیادہ آتا ہے, قبول ہوئی کہ نہ ہوئی. سورت مومنون میں اللہ تعالیٰ آیت فرماتے ہیں ایسے لوگ جو نیکیاں کر کے بھی ڈرتے ہیں. حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی یہ کون ہے جو ڈرتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں, زنا کرتے ہیں پھر ڈرتے ہیں؟ کہا نہیں, صدیق کی بیٹی صدیقہ, یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیاں کر کے بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوئی ہیں کہ نہیں. تو ہمارے اسلاف بھی ایسے ہی تھے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے کہ ہمارے اسلاف اتنی نیکی کر کے پھر کیوں ڈرتے تھے, یہ سوال ہے. میں آپ کو ایک انسانی طبیعت کے ناطے سے بتاتی ہوں کہ آپ کے گھر کوئی ایسا مہمان آ رہا ہے جس کی آپ بہت عزت بھی کرتے ہیں, پیار بھی ہے, وہ ہے بھی بڑے اعلیٰ مقام کا, یعنی شہر کی کوئی بڑی شخصیت ہے, کوئی علمی دینی دنیاوی, سارا کچھ کر کے بھی دل دھڑک رہا ہوتا ہے. कि पता नहीं पसंद आएगा नहीं, पता नहीं उनकी खातिर कर सकेंगे नहीं, उनकी इज्जत कर सकेंगे नहीं। किसी को बहुत दिल से भी गिफ्ट दें, बहुत प्यार है आपका, फिर भी खौफ नहीं होता पता नहीं उसको पसंद नहीं आएगा। तो जितना अल्लाह से प्यार बढ़ता है ना, उतना अपनी नेकियाँ छोटी लगती हैं। सीधी सी बात है कि यकीन ये है। अब आप खुद देखें, हाँ, जो हमने नमाज पढ़ी इससे पहले, क्या वो इस काबिल थी कि अल्लाह को पेश कर सके? नहीं है ना। हम तो ये कहते हैं कि अल्लाह हमने अपनी हसीयत से पढ़ी है, मैं जो कर सकती थी, फत्तकुल्लाह मस्तता तुम की कैफियत, ये मैंने कर ली है, अब तू कबूल कर ले, बाकी तो अपने पास से डाल ले। जैसे आप देखिए, एक छोटा सा बच्चा है, वो माँ को कहता है मुझे फलां खिलौना ले दो, माँ कहती है बैठ जो, नहीं देना, फिर वो थोड़े थोड़े अपने पैसे जमा करता है। हो सकता है उसके 10 यूरो जमा हो जाए, एक दिन माँ को कहता है मामा चलो मेरे ये पैसे थोड़े जमा हुए हैं तो मुझे वो ले दो, तो माँ को इतना लाड आता है, वो कहती है 100 वाली चीज़ तो मैं 10 में कौन देगा, लेकिन उसको इतना प्यार आता है कि ये बेचारा रोज़ के पैसे जमा कर रहा है, खर्च नहीं कर रहा, तो वो क्या कहेगी, वो कहती है चलो लो ये जो तुमने जमा किए ना, बाकी मैं डाल के दे दूंगी। तो अल्लाह ने हमारे साथ भी ये करना है कि तुम कोशिशें बड़ी करते हो, लेकिन मुझे पता है तुमसे होता कुछ नहीं है, लेकिन चलो मैं तुम्हारी इन कोशिशों पे तुम्हें देता हूँ। और कुरान में ये बात है कि इंसान को उसकी कोशिशों का बदला मिलेगा। तो जो हमारे असलाफ थे, असलाफ किसको कहते हैं, पुराने लोग, तो असलाफ रमज़ान की भी पूरी इबादत करते थे। इस रमज़ान में मैंने एक पूरी सीरीज़ करवाई है, असलाफ और रमज़ान, असलाफ और उनका आखिरी अशरा कैसा था, और उनका कुरान से क्या ताल्लुक था, और वो तरावियाँ कैसे। तो बेसिकली असलाफ कहते हैं हमारे बुजुर्ग, हम सब के बड़े, सबसे पहले तो ऑफकोर्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आपके सहाबा, फिर ताबईन, तबा ताबईन, तो उसके बाद से आज तक उम्मत में जितने भी नेक लोग गुजरे हैं, वो सारे जो थे वो जब कुरान के साथ अपना ताल्लुक जोड़ते थे और हदीस से जोड़ते थे, तो उनको ये यकीन होता था कि जो बात इसमें है वो सच है। और जिसने भी तौरे कुरान सुना है, कहाँ से भी सुना है, किसी से भी सुना है, या ख़ुद तर्जमे से पढ़ा, आपने देखा होगा बार बार कुरान में जन्नत और जहन्नम, जन्नत और जहन्नम, तो इसका अंदर ये हकीकत है। तीसरी चीज़ जो कुरान में कसरत से आती है, एलमो अन्नमल हयात दुनिया लाइबों वाला, दुनिया खेल है, दुनिया 4 दिन की है। आप देखिए मेरे आपके 60-70 साल है मैक्सिमम, अल्लाह में से किसी को 10 ऊपर और भी दे दे तो उसकी नवाजिश है, सच्ची बात है। उसके बाद तो जीने का मज़ा भी नहीं रहता, 70-80 के बाद तो बंदा ऐसे ही बस एक चलता फिरता पुर्जा बना होता है। लेकिन ये 60-70 साल में ही हमने अपनी आखरत को चूज़ करना है। जैसे आपके मेरे बच्चों के पास एक वक्त है ना इस वक्त चूज़ करने का, मेडिकल ले लें, साइंस ले लें, केमिस्ट्री ले लें, फिज़िक्स ले लें, कंप्यूटर में चले जाएं, है ना चॉइस। अब अगर जो उन्होंने चूज़ किया उस पर उनका कैरियर उधर चल पड़ेगा। अब कोई आपसे 50-60 साल की उम्र का बंदा कि अब मैं चूज़ करूँ मैंने डॉक्टर बनना कि नहीं बनना, तो सॉरी अब टाइम चला गया। बिल्कुल इस वक्त मैं और आप अगर इस सोच से देखें, ये जो अब मेरी ज़िंदगी के साल और महीने हैं ना, ये मेरी आखरत को डिसाइड कराएंगे, या जन्नत या जहन्नम, देर इज़ नो थर्ड वे, तीसरा रास्ता कोई नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं फरीकुम फिल जन्ना व फरीकुम फिल नार। दूसरी बात है कि जिसने आग में जाना है, अल्लाह उसको चाहे तो बाद में निकाल लेगा, सही रिवायतों से मिलता है। आखिर में जहन्नम में सिर्फ वो रह जाएंगे मतकब्बिर और सरकश, और जिनके दिल में किब्र था, कुफर था, सब है। बाकी ईमान वालों को भी अल्लाह निकाल देगा, निफाक वालों को भी निकाल देगा, लेकिन जन्नत में आने के बाद एक दफ़ा कोई नहीं निकलेगा। इसको इमेजिन करें, एक दफ़ा आपको मुझे अल्लाह ने जन्नत के अंदर पांव रखने दे दिया, फिर कभी कोई हमें वहाँ से निकलने नहीं देगा। कितना नफ़े का सौदा है, सिर्फ चंद दिन की ज़िंदगी। तो क्या अल्लाह ताला ने मुझे आपको इस दुनिया में सिर्फ खाने पीने, घर से जाने, बच्चे पालने, इसके लिए भेजा? ये काम तो बड़े आराम से कोई और भी कर सकता था। क्यों आदम को पैदा किया, क्यों फरिश्तों से सजदे करवाए, क्यों इबलीस की दुश्मनी डलवाई, कैसे जन्नत दिखा के दुनिया में भेजा? इसका मतलब है कि इस दुनिया में आने का एक बहुत बड़ा मकसद है। लेकिन वही जिसने हमारे माँ बाप को जन्नत से निकलवाया था, आज हमारे पीछे पड़ा हुआ है, और वो शैतान है, अलगरूर उसका नाम है, धोखेबाज है। और शैतान का जो सबसे बड़ा धोखा है ना, वो कहते नहीं तुम पहले अपनी दुनिया ठीक करो, नहीं इस दुनिया को भी तो ठीक करना है। और जब लोग ये जुमला बोलते हैं ना, दीन भी रखो दुनिया भी रखो, तो मैं सोच में ही रह जाती हूँ, मैं अब इनसे क्या पूछूँ कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि हमारे दीन में ही सारी दुनिया है। आप खाते हैं, पीते हैं, घर बनाते हैं, आपको ये दुनिया लगती है, मुझे तो ये दीन लगता है। आप बच्चे पालते हैं, आप शौहर के साथ खुश रहते हैं, आप अपने रिश्तेदारों को मिलते हैं, आप सदका खैरात करते हैं, ये दीन है। हमारे दीन में दुनिया छुपी हुई है पूरी की पूरी, ये रहमानियत वाला दीन नहीं है, और हमारे दीन में किसी जायज़ ख्वाहिश से इनकार नहीं है। तो लिहाजा इस कुरान को पढ़ने के बाद सहाबा कराम और उनके बाद के जो लोग थे, उनके दिल से दुनिया की मोहब्बत चली जाती थी, ख्वाहिशात नफ्स पे काबू आता था, दुनिया की रंगीनियों से खिंच जाते थे। वो कहते थे नहीं नहीं बेकार है, और शैतान उनको भी दिखाता था पुरकशिश करके, उसका हथकंडा ही है, पहले नेकियां मुश्किल दिखाएगा, नहीं 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 ये नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है, नहीं बहुत लंबा टाइम है, नहीं बहुत दूर है, नहीं ऐसे नहीं होगा, बैठ नहीं सकते। 3 घंटे फिल्म देख सकते हैं, 3 घंटे के लिए अगर कहा जाए कुरान की क्लास में, तो इज़ टू लॉन्ग। रोज़ घर से बाजार और ग्रोसरी शॉपिंग जॉब के नाम पे निकल सकते हैं, लेकिन दीन सीखने के लिए या सिखाने के लिए जाना शैतान मुश्किल करता है, ये उसका एक हथकंडा है। जब बंदा नेकियों से नहीं हटता तो गुनाहों को पुरकशिश दिखाता है, और आखिर इंसान को जहन्नम की आग और उसके तंदूर में फिकवाता है। जिस बंदे ने अपनी ख्वाहिशों पे काबू पा लिया, उसके लिए जन्नत में जाना बहुत आसान है। किसी का कॉल मैंने इस दफ़ा भी दौरे कुरान में नकल किया था कि एक कदम तुम अपने नफ्स पे रख लो, दूसरा कदम जन्नत में होगा। नफ्स है ना, वमा उबर्रियु नफ्सी इन्ना नफ्सा लअम्मारा तुम बिस्सू, 13वें पारे की पहली आयत है। मैं अपने नफ्स को बेगुनाह, या मैं समझता ही नहीं हूँ कि ये बेबहुत ही पाक है, क्योंकि ये हमेशा बुराई का हुक्म देता है। तो लिहाजा जब नफ्स अम्मारा के तकाजे इंसान दबाता है, तो उसको समझ आ जाती है कि आखिर मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद है, मेरे अल्लाह ने कुछ करना है। और जो चुकन्ना हो गया ना, जिसको आप कहते हैं कनिंग, बी अवेयर्ड हो गया, आप कह लीजिए कि शैतान उससे भाग जाता है। वो कहता है ये इसको होश आ गया, ऐसे जैसे चोर घर के बाहर फिरता रहेगा, उसको शक पड़ जाए ना घर में कोई आए, अंदर नहीं आएगा, और कोई जाग रहा फिर तो बिल्कुल नहीं आएगा, और गाफिल पाया देखे, घर खाली देखे, तो वो कोई ना कोई दरवाज़ा खोल के आ जाएगा। शैतान का काम बिल्कुल चोर वाला काम है, रहता इर्द गिर्द, फी सुदूर इन नास, हमारे सीने के इर्द गिर्द फिरता है, दिल के इर्द गिर्द सीने में रहता है, दिल में नहीं आ सकता, लेकिन जब गाफिल पाता है तो दिल में आके खिड़की खोल के फिर अंदर की सारी सेटिंग चेंज कर देता है, ख्वाहिशों को सजाता है। तो लिहाजा मुझे आपको इस वक्त, जबकि हम एक बहुत प्यारा रमज़ान गुजार चुके हैं, अपने आप से पूछना है, क्या अब 3-4 दिन जो गुजर गए हैं रमज़ान से गुजरे हुए, हम आज शवाल में आ चुके हैं, क्या वो रमज़ान के पूरे कुरान ने जो मेरे दिल पे असर डाले थे, या जितने मैंने पैगाम सुने थे, उनका असर कम तो नहीं हो गया? वो जन्नत की तलब कम तो नहीं हो गई? वो जहन्नुम से बेखौफी तो नहीं हो गई? वो सेल्फ कंट्रोल में कमी तो नहीं आ गई? वो दुनिया के लिए भाग दौड़ में दोबारा तो नहीं चल पड़ी? क्योंकि कुछ लोग तो इंतज़ार कर रहे होते हैं, इधर रमज़ान ख़त्म हो, चलो शुक्र है, उतारो सब कुछ चीज़ें, हटाओ, नॉर्मल पे आ जाओ, बैक टू लाइफ, रमज़ान चला गया। क्यों रमज़ान चला गया? अल्लाह तो इधर ही है, कुरान तो इधर ही है, इस्लाम तो इधर ही है, बाकी रह गई ईद की खुशियों के नाम पर अल्लाह को नाराज़ करना, ये बहुत मुश्किल बात है। ये तो ऐसे ही है कि सारा दिन खाना पकाएं और रात को उस पर राख डाल दें, मेहमानों के सामने पेश करने से पहले खाना ही जल जाए। मैंने अपने जो थोड़ी सी इबादत या कोशिशें की, इनकी हिफाजत करनी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से आता है कि रमज़ान की जब आखिरी रात होती तो एक आवाज़ लगाते, कहते कौन है जिसके आमाल कबूल हो गए ताकि हम जाएं और इसको मुबारकबाद दें, और कौन है जो महरूम है यानी रमज़ान की बरकतों से फ़ायदा ही नहीं उठा सका, रमज़ान चला गया, कोई हमें बताए और हम जाकर उससे ताज़ियत करें। अब क्या मतलब था हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो का? एहसास दिलाते थे कि देखो अभी वक्त नया नया गुजरा है, अपनी फ़िक्र करो, तुम्हें असल ये फ़िक्र करनी है कि कबूल हुआ है कि नहीं हुआ, किस नाते से, किस तरह से हुआगा। अब ये सारा कुछ करके आप और मैं अपने आप से पूछ सकते हैं, बाज़ असलाफ़ तो ऐसे थे ईद के दिन पर गम तारी हो जाता, लोग उनको कहते आज तो मुसर्रत का दिन है, खुशी का दिन है, तो कहते हाँ आपने सच कहा, लेकिन असल में मैं एक गुलाम हूँ और मेरे आका ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं बस उसके काम करता रहूँ, मैं ईद के दिन भी फारिग नहीं रह सकता, और मैं नहीं जानता कि उसने मेरे आमाल को कबूल किया है कि नहीं किया। बात समझ रहे आप, किस तरीके से लोग ईद के दिन इस चीज़ का गम कर रहे होते थे कि कहीं गफलत का पर्दा ना छा जाए। इसी तरह वो है बिन विर थे, एक कौम को ईद के रोज़ हंसते देखा, जैसे लोग हंसते हैं बोलते हैं, कहने लगे अगर तो ये इनके रोज़े कबूल हो गए हैं तो शुक्र करने वालों का ये वतीरा नहीं होता कि खुशी में इस तरह उछलें कूदें, और अगर इनके रोज़े कबूल नहीं हुए तो डरने वालों का ये शेवा नहीं है। क्या पता चला कि खौफ से दूर नहीं होना, अपने आप को हमेशा खौफ के अंदर रखें। इसके बाद अब हम चलते हैं इस बात पे कि रमज़ान के बाद भी क्या कुरान के साथ ताल्लुक़ रहा जाता है। तो इसके लिए आज मैंने आपके लिए जो आयत, सिर्फ इसका तर्जुमा मैं आपके सामने हल्का सा रख दूँ कि आज के दौर में मेरी आपकी क्या जिम्मेदारी है। तो हामीम सजदा की आयत 18, मैं ऐसे ही करूँगी सिर्फ एक एक आयत, और उसके साथ हल्की हल्की वजाहत रखती हूँ ताकि हम इस थोड़े से वक्त में ये देख सकें कि हमारा आज के दौर में कुरान के साथ ताल्लुक़ क्यों ज़रूरी है। देखिए हर दौर में ही था, जब से अल्लाह के नबी दुनिया में भेजे गए तब से लेके आज तक और क़यामत तक रहेगा, लेकिन इस वक्त जो आज का दौर गुजर है ना, ये आपकी मेरी 20th सेंचुरी जिसमें से आप और मैं और गुजरे, हम एक बिल्कुल एज पे खड़े हैं। पीछे वाली नस्लें अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ उनके अंदर और तरह से सोच थी। अब खास तौर पे जब हम वेस्ट में रहने वाले मुस्लिम्स हैं, वेस्ट में भी आप यूरोप में रहने वाले मुस्लिम्स को ले लीजिए, इस वक्त अगर आपने मैंने इस जिम्मेदारी को नहीं समझा तो याद रखिए हमारी नस्लें हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी, क्योंकि फितरत का असूल है, अल्लाह की ये सुन्नत है, मुस्तकिल सुन्नत है कि जिस कौम ने अपनी किताब को आमने किया, किताब को नहीं समझा, उससे फ़ायदा नहीं उठाया, उसके मुताबिक नहीं चली और बाद में उसको दूसरों के साथ शेयर नहीं किया, अल्लाह ने उस कौम को ख़त्म कर दिया। बनी इसराइल के साथ भी यही हुआ था। पूरी सूरह बकरा बनी इसराइल की हिस्ट्रियाँ बताती हुई आपको मुझे दिख रही है। ज़रूरत है इस बात की कि आप और मैं आज इस चीज़ की फ़िक्र करें। तो अल्लाह सुबहान तआला क़यामत का एक मंज़र पेश करते हैं, और आप तसव्वुर की आँख से ले लीजिए अपने आप को वहाँ। आयत 18 से करते हैं, पीछे कौमों की हलाकत की बात थी, उसके बाद फरमाया आयत 18, व नजैन अल्लज़ीना आमनू, और निजात दे दी हमने ईमान वालों को, व कानू यत्तकून, और वो जो कि तकवा अख्तियार करते थे। यानी पिछली कौमों पे अजाब आए, कौम समूद पे आया, कौम साले पे आया और कौम लूत पे आया। पीछे कुरान पाक में बहुत जगह आती हैं ये चीज़ें। बचता कौन है उन अजाबों में? आमनू व यत्तकून। आप और मैं आज दुनिया के जिस दौर से गुजर रहे हैं, कौन सा गुनाह आपको नहीं दिख रहा? कुफर से लेके, शिर्क से लेकर, होमोसेक्सुअलिटी से लेकर, जिना से लेके, बदकारी से लेकर, शराब कबाब, ये 7 गुनाह तो उंगलियों पे है, और इसमें एक सूद का डाल लूँ तो कबायर की लिस्ट में एक अच्छे खासा नाम आ गया। कौन सा गुनाह नहीं दिख रहा? एथीज़म, पूरे पूरे मुल्क एथीज़म हो गए। दहरियत, पहले कोई एक होता था दहरिया कहते थे, वो दहरियत दिल ऐसा आता था जैसे इंसान ही नहीं है। आज लोग कहते हैं आई डोंट हैव एनी रिलीजन, आई डोंट बिलीव इन गॉड, आई डोंट थिंक देर इज़ सम गॉड। ये फैशन है आपको पता है आज के दौर का, पहले गॉड को गोश का, और अब गोश को भी कहते कोई नो गोश, गोश कुछ नहीं है, आई एम बाय माई सेल्फ, एवरी थिंग इज़ जस्ट लाइक अ मदर नेचर। इससे बड़ा गुनाह क्या होगा? तो जब कौमों में इस तरह से इज्तमाही गुनाह आते हैं ना, तो अजाब का बहुत ख़तरा होता है। यानी मैं अगर कुरान की आयनक से आपको कहूँ तो किसी लम्हे भी अजाब आ सकता है। पर आया क्यों नहीं अभी तक? पहले तो कौम लूत ने एक जुर्म किया, अल्लाह ने पकड़ दिया, दूसरी कौम ने किया उन पर पकड़ा, उसकी वजह क्या है? और अल्लाह बचा के रखे कि बराह रास्त कोई नबी नहीं आज। पिछले दौर में होता क्या था कि जब किसी बस्ती में कोई गलत काम होते थे ना, तो अल्लाह ताला एक नबी भेजते थे, वो बिल्कुल उसी बात पे बात करते थे जो खराबी होती थी। आज तो लोग दीनदारों को कहते हैं नहीं नहीं इन खराबियों पे बात नहीं करें जी, कुछ और बताएं, कुछ फजीलतें बताएं जी, मसले मसाइल बताएं। भाई क्यों? डॉक्टर बीमारी ना बताए और इधर उधर के विटामिन दे के आपको घर भेज दे तो आप बच जाएंगे? आज के दौर में दीनदारों का काम ये होना चाहिए कि जिस सोसाइटी में जो भी खराबी है उसको हाईलाइट करके लोगों को उससे बचने के तरीके, प्रिकॉशंस बताएं, उसके इलाज बताएं ताकि बच सकें। तो अब नबी चूंकि डायरेक्ट नहीं आने इसलिए मोहलत दी हुई है। सिर्फ चंद 100 लोग होते थे किसी नबी के दौर में, जैसे कौम लूत की मिसाल ले लेते हैं, होमोसेक्सुअल्स थे, मर्द मर्दों के साथ बुरा फेल करते थे। आप बताइए, आप माशाल्लाह आप में से बड़ी उम्र के भी बैठे हैं, यंग भी बैठे हैं, आज से 10 15 20 25 30 साल पीछे ले जाएं, कभी आपने इस चीज़ को इतना कैजुअल सुना था जितना आज हो गया? बच्चे, बिलीव मी, मैं हैरान हो जाती हूँ, स्कूल गोइंग बच्चे अपनी माओ को आके कहानियाँ सुनाते हैं। आप क्या बात करते हैं? अब जब लीगलाइज ये सब कुछ हो गया, अब ये सारा कुछ जो बीच में आ गया, तो मुझे आप बताइए कि कौन बचेगा इससे? किसने बचना है? जिसको ईमान और तकवा होगा। जब मेरे सामने सवाल जवाब आते हैं, बच्चियां भी खुद करती हैं, इतनी कैजुअल बात होती है, मैं सोचती हूँ हम तो अपनी माँ से शादी से पहले कभी अपने पर्सनल बातें नहीं की थी। माँ से नहीं बात करना सहेली से तो दूर की बात होती थी। आज लड़कियाँ ऐसी ऐसी बातें करती हैं, ऐसे ऐसे सवाल। यानी एक बच्ची ने मुझसे सवाल किया कि क्यों इस्लाम होमोसेक्सुअलिटी को बुरा कहता है? इट्स माई बॉडी, इट्स फाइन, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इट्स फन, आउज़ु बिल्ला। आप बताएं, जब गुनाह पे इतनी जुर्रत बढ़ जाएगी तो उसके बाद क्या फिर वो गुनाह चुभेगा? तो आप बताइए कि इस दौर में जब ये सब बुराइयाँ आम हैं, तो फिर मेरा आपका क्या काम है? सिर्फ बैठ कर तनकीद करना लोगों पे? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका, बल्कि और जिसको नहीं पता 4 लोगों को और पता लग जाएगा। महफिलों में इसके किस्से बयान करना? नहीं, हरगिज़ नहीं। किसी प्लेटफॉर्म पे जाके क्या करें? इसका तरीका यह है कि हमें सबसे पहले अपनी नस्लों को ये एहसास दिलाना है कि हम हैं कौन। और मैं बिल्कुल बड़ी बात नहीं करना चाहती, लेकिन जो बुराई गैर कौमों में आपको खुली दिखती है ना, वो मुसलमानों की नस्लों में छुपी होती है। 5 साल बाद वो थोड़ी सी खुल जाएगी, और 10 साल बाद पीछे। बस आप देखिए, आज से 20 साल पीछे ले लेती हूँ, ज़्यादा ना ले जाएं। लड़का लड़की की दोस्ती हमारे माशरे में क्या समझी जाती थी? यारी, छुपी दोस्तियाँ, इज्जत के चोर, ये लफ्ज़ थे ना। आज किसी माँ को पता चल जाता मेरा बेटा किसी लड़की को पसंद करता, तो माँ कहती ला घर उसको दिखा कैसी है, मैं देखती हूँ, चल चल मुझे बता दे। एक माँ तो इतनी अदा से कहती हुई देखी, अरे मुसलमान है ना लड़की भी ठीक है, यानी चूज करो। किसी ने कहा दोस्तियां करो पर उससे करना जिससे शादी करनी। इतना लेयर मूड, हंसी झुक, ठीक है बस इससे करना जिससे शादी करनी। तो फिर आप बताएं कि आपने लिविंग टुगेदर को जायज करार दे दिया। हाँ हाँ ठीक है ट्राई कर लो, कोई हर्ज नहीं होता, फिर बाद में मसले ना हो। क्या माँ बाप और दादा दादी ट्राई कर करा के कामयाब जिंदगी बसर करते थे? तो याद रखिए, जो बुराई आज ढकी छुपी है वो कल खुलेगी। तो अल्लाह सुबहाना तआला यहाँ इस सूरत में फरमाते हैं कि हमने अजाबों से निजात सिर्फ उन बस्तियों को दी है जहाँ ईमान और तकवा था। तो पहली बात जो इस वक्त इन आयतों की रोशनी में आपके मेरे लिए, ईमान और तकवा अपने अंदर भी अपनी नस्लों के अंदर भी। अब इसके रास्ते तरीके खुद ढूंढने हैं। आप मुझे बताएं गंदे कार्टून देख कर तकवा आता है बच्चों में? और ईमान उन गरीबों में अगर है, बच्चे मासूम होते हैं, लेकिन जो कपड़े जो हाल हुलिए जो कार्टून्स में और जो उसमें थ्रिल और म्यूज़िक और जो गेम्स आजकल की हैं, ये इस वक्त बात लंबी हो जाएगी अगर मैं ये सारी कोशिशें आपको सुनाऊँ, लेकिन फिगर एंड फैक्ट्स के साथ मेरे पास रिपोर्ट्स पड़ी होती हैं कि किस दौर में क्या फितने उठ रहे हैं। कार्टूनों के जरिए बच्चों को इस वक्त होमोसेक्सुअलिटी का मैसेज दिया जा रहा है। आप मेरे से बैठ के बात करें, मैं आपको वो सारे लिंक्स दिखा सकती हूँ। बच्ची बच्चे को 7 स्कूलों में अब ऐसे बिठाया जाता था पहले कि लड़का लड़की, लड़का लड़की, या ऐसे 10 से 5 साल बीच की बात है कि बच्चों के डे केयर से यूं बिठाते थे पेयर्स में कि इनको शुरू से ही जरा अपोजिट सेक्स हो। अब क्या करते हैं, लड़की लड़की, लड़की लड़की और लड़के लड़के। क्यों? इनसे खेलो। पहले ब्लू और पिंक का कॉन्सेप्ट खुद दिया, ब्लू फॉर बॉय पिंक फॉर गर्ल्स, अब खत्म कर दिया। अब ये सारे मौजूद हैं, फिर वो कहते हैं पैदा होते बच्चे की जिन्स का नाम ही ना लो, बस ये सब एक है, ताकि कल हम इनकी इकट्ठे लड़कियों लड़कियों की शादियां होने दें और लड़कों लड़कों की। ये क्या अल्लाह के खिलाफ बगावत नहीं है? और फिर स्कूलों में, यानी हमारी एक स्टूडेंट है और उसका बेटा मेरा हाल है 10-12 साल का या उसके अराउंड होगा, वो इतना परेशान है माँ से कि स्कूल में टेबलो है और मुझे प्ले में हिस्सा दिया जा रहा है पर मैं नहीं करूँगा वो। जब उसने थोड़ी रिसर्च की जाके पूछा, पता चला गेइज्म करवाना था उनसे। लड़का है उसका, तो उसको लड़कियों वाले कपड़े पहनाने थे और 2 लड़कियां बन के मैसेज उसका यही था कि होमोसेक्सुअलिटीज ओके। आप बताइए 12-14 साल का लड़का इसके बाद आगे क्या करेगा? तो ये एक वार है।